السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن، اور ایڈیٹرز ڈیسک پر ہیں بیجت چلانی۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پہلے پاکستان۔
کشمیر میں حد بندی لائن پر فائرنگ میں تیزی، 5 شہری ہلاک۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
بلوچستان بھر میں زبردست بارش و برفباری، قومی شاہراہیں بند۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کشمیر میں حد بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان گزشتہ کئی روز سے جاری جھڑپوں میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستان اور بھارت نے ان جھڑپوں کے دوران ایک دوسرے کے شہری علاقوں کو بھی مارٹر بموں اور ہلکے درمیانی درجے اور بھاری ہتھیاروں سے ہدف بنانے کا الزام لگایا ہے۔ گولہ باری کے نتیجے میں کنٹرول لائن کے بھارتی علاقے میں ایک خاتون اور اس کے 2 بچے اور پاکستان کے علاقے میں 2 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستانی عہدیداروں نے بھارتی شیلنگ اور فائرنگ میں 2 پاکستانی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی بھی خبر دی ہے۔ ISPR کے مطابق یہ 2 فوجی حوالدار عبدالرب اور نائک خرم حد بندی لائن کے نکیال سیکٹر میں ہفتے کو مارے گئے۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل۔
متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر بھارت اور پاکستان کے افواج کے درمیان گزشتہ منگل کو شروع ہونے والا فائرنگ اور شیلنگ کا سلسلہ ہفتے کو نہ صرف جاری رہا بلکہ اس میں شدت آ گئی۔ پاکستان اور بھارت نے ان جھڑپوں کے دوران ایک دوسرے پر شہری علاقوں کو بھی مارٹر بموں اور ہلکے درمیانی درجے اور بھاری ہتھیاروں سے حد بنانے کا الزام لگایا ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سرمائی صدر مقام جموں میں عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستانی فوج کی فائرنگ اور شیلنگ کے نتیجے میں ضلع پونچھ کے سلوتری نامی گاؤں میں ایک خاتون 24 سالہ روبینہ کوثر، اس کا 5 سال کا لڑکا فیضان اور 9 ماہ کی بچی شبنم موقع ہی پر ہلاک ہو گئے، جبکہ روبینہ کا خاوند محمد یونس زخمی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے پونچھ ہی کے منکوٹ علاقے میں ایک خاتون نسیم اختر شدید طور پر زخمی ہوئی تھی۔ عہدیداروں نے مزید بتایا کہ سلوتری اور منکوٹ کے ساتھ ساتھ پونچھ کے بالا کوٹ اور کرشنا گھاٹی سیکٹروں میں بھی پاکستانی فوج نے بھارتی چوکیوں اور دوسرے ٹھکانوں کو فائرنگ اور شیلنگ کر کے ہدف بنایا۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستانی فوج کی اس کارروائی میں بھارتی فوج کا کوئی جانی یا مالی نقصان ہوا یا نہیں۔ جموں میں بھارتی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل دیویندر آنند نے بتایا کہ پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کی اگلی چوکیوں اور شہری آبادی کو ہدف بنانے کے دوران مارٹر بم اور بھاری ہتھیار، جن میں 105 ملی میٹر ہاویزر توپ بھی شامل ہے، استعمال کیے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی فوج نے پاکستانی شیلنگ اور فائرنگ کا سخت اور مؤثر جواب دے دیا۔ ادھر پاکستان میں مسلح افواج کے ترجمان ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے بھارتی فوج پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے کئی سرحدی علاقوں کو، جن میں ہاٹ سپرنگ، تتا پانی اور جان روڈ بھی شامل ہیں، شہری آبادی کو بلا اشتعال فائرنگ اور شیلنگ کا نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔ ISPR کے ایک بیان میں کہا گیا کہ بھارتی فوج کی اس کارروائی میں حد بندی لائن کے پاکستانی علاقے میں 2 شہری ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ بیان کے مطابق زخمی شہریوں کو کوٹلی کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ فائرنگ اور جوابی فائرنگ کے واقعات حد بندی لائن کے اوڑی اور چکھوٹی علاقے میں بھی پیش آئے ہیں، جس کے بعد دونوں طرف کے متاثرہ علاقوں سے سینکڑوں کنبے محفوظ مقامات کو منتقل ہوئے ہیں۔ اوڑی سیکٹر میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا کمل کوٹ کا علاقہ ہے۔ وہاں گولہ باری میں کئی نجی گھر تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے، جس کے بعد اس علاقے سے نقل مکانی کرنے والے کنبوں نے اوڑی قصبے میں ایک اسکولی عمارت میں پناہ لے رکھی ہے۔ کمل کوٹ کی ایک خاتون خالدہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
2 دن ہو گئے، بہت پریشانی ہوتا، گولہ باری چلتا ہے، پریشان ہوتا بہت، اسی ہوتا نہ رہ سکتے، ایسا گزار ہی نہیں ہو سکتا، آج تک کوئی بندوبست کرو۔
ایک اور شہری محمد رفیق کا کہنا تھا،
جی ہم تو آج 2 دن سے مطلب یہاں ہیں، ٹھیک ہے، کھانا یہ تو ہمارے مقدر میں رزق تھا جس کے ذریعے سے ہم یہاں پہنچ گئے، مگر وہ گھر کا چین نہیں ملا۔ وہاں تو گولوں کی جب بارش پڑتی ہے، یہ بار بار کا کام ہے، یہ ایک بار کا کام نہیں ہے، یہ پہلے سے 98 سے یہ بارش ہمارے اوپر برستی رہی۔
محمد رفیع نے مزید کہا،
انہوں نے بولا ہمیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کیا کچھ نہیں، آپ اپنی کرسی کے پیچھے یہ ہمارے اوپر یہ ظلم مت چھاؤ، ہم امن پسند لوگ ہیں، امن چاہتے ہیں، अमन करो, दोनों आपस में बातचीत करके हमें चैन की जिंदगी पसंद करने दो यार।
इस दौरान भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत ने हदबंदी लाइन पर पेश आने वाले फायरिंग और शेलिंग के वाकयात में इजाफे को देखते हुए पुंछ और राजौरी अजला के सरहदी इलाकों में मजीद 200 इनफरादी और इतनी ही तादाद में कम्युनिटी बंकर तामीर करने का ऐलान किया है। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
सामिन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के बारे में बात करने के लिए अब हमने अपने नुमाइंदे इस्लामाबाद से आसिम राणा और नई दिल्ली से रितुल जोशी को दावत दी है, जो हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करेंगे। वेलकम टू द शो आसिम और रितुल।
जी, बहुत शुक्रिया।
आसिम, पहले आप बताइए कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आने वाले थे, क्या तवक्कुआत थी? उनका दौरा जो है फ़िलहाल थोड़ी सी ताखीर का शिकार है, क्या ताज़ा तरीन है उस बारे में?
जी बिल्कुल, सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल जुबैर ने उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना था, लेकिन उनके दौरे के हवाले से कहा जा रहा था कि अपने दौरे में वो पहले भारत जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो आएंगे। लेकिन जो अब तक जो ताज़ा तरीन इत्तला आई है, उनका दौरा जो है बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन तक जो है मौखर हो गया है। अब उनके नए दौरे की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। इस हवाले से हमारा सऊदी सफारतखाने से भी रब्ता हुआ, उन्होंने भी इस हवाले से अभी तक कोई तारीख नहीं दी, जबकि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी इस हवाले से अभी तक कोई तारीख नहीं दी कि आदिल जुबैर कब पाकिस्तान आएंगे। लेकिन जो एक कहा जा रहा है कि वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का खसूसी पैगाम लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं और ऐसा ही पैगाम लेकर भारत भी जा रहे हैं, और वो कशीदगी जो सब दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दौरा इसी तनाजे में था, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि उनका दौरा 3 से 4 दिन के लिए मौखर हुआ है। पाकिस्तान में उनका बड़ा शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा है कि फौरी तौर पर जो कशीदगी है, मौजूदा कशीदगी, उसमें कमी आए, और इस मकसद के लिए आदिल जुबैर का दौरा बहुत अहम है।
लेकिन आसिम, आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ रहिए। रितुल, आप बताइए, पाकिस्तान ने जो भारतीय पायलट जिसको गिरफ्तार किया था तैयारा मार गिराने के बाद, उसको वापस कर दिया गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने, ऑफिशियली क्या रद्द अमल है इस बारे में?
जी, अगर आप उनके रिएक्शन को देखें, विंग कमांडर अभिनंदन जो वापस आए हैं, अगर आप गवर्नमेंट को देखेंगे तो उनका कहना है कि वो बहुत खुश हैं, वो वापस आ गए हैं, क्योंकि कल जब ब्रीफिंग हुई थी एयरफोर्स की तो उसके बाद उन्होंने आगे कुछ कहा नहीं था। देखिए, अभी उनकी डिब्रीफिंग होनी है और मेरे ख्याल से उनसे पूरी बातचीत करने के बाद ही कोई और तफसील से बयान गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। लेकिन अगर मैं आपको लोगों का रिएक्शन बताऊं तो एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त भारत में ऐसा है जो इसे एक बड़े जेस्चर की तरह देखता है पाकिस्तान की, कि उन्होंने वापस कर दिया विंग कमांडर अभिनंदन को। लेकिन थोड़ी सी तल्खी इस चीज को लेकर है कि पूरे प्रोसीजर में जो डिले आया, और दूसरी चीज एक जो वीडियो उनके रिलीज होने के वक्त सोशल मीडिया में आया जिसमें वो इंडियन मीडिया की बुराई कर रहे हैं, तो उसको लेके लोगों को लगता है कि ये जो बहुत अच्छा सा एक माहौल बना था और थोड़ा टेंशन कम होने वाली सूरत हाल बन रही थी, उस वीडियो ने उस माहौल को थोड़ा सा खराब किया है। लेकिन फिर भी एक तबका है, जैसे गुज़िश्ता कुछ रोज में बहुत ज्यादा नाराजगी पाकिस्तान को लेकर आवाम में नजर आ रही थी, तो विंग कमांडर अभिनंदन के वापस आने से ये नाराजगी कम जरूर हुई है।
रितुल, ये बताइए, दोनों साइड का जो मीडिया है, हमने देखा चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया है, उस पे बहुत एक वॉर मॉन्गरिंग जिसे कहते हैं उस तरह के, क्या ये जो मीडिया में एक बहुत शदीद किस्म का ये जो जंग के लिए एक नेशनलिज्म की जो हमें वो नज़र आती है, उस पे कुछ कमी आई है अभी पिछले एक दो रोज़ में, या वो अभी उसी तरह है जैसे पहले था?
नदीम, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर मैं आपको भारत के मीडिया की बात करूं, और वो भी जो टेलीविजन है उसकी अगर मैं बात करूं, तो वहां पे ये वॉर मॉन्गरिंग का जो पिच है वो बहुत ज्यादा हाई है। उसमें अभिनंदन के वापस आ जाने के बाद कोई बहुत कमी आ गई हो ऐसा नजर नहीं आता। कुछ अखबारों ने जरूर एक मॉडरेट लाइन लेने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी जिस सो कॉल्ड नेशनलिज्म की आप बात कर रहे हैं, शायद वो कहीं ज्यादा हावी होता है। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जहां कुछ आप मुख्तलिफ आवाजें आपको सुनने को मिल जाएंगी जो नहीं चाहती कि इस तरह के टेंशन को बढ़ाया जाए या फिर जो पिच है उसको इतना ज्यादा हाई किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर मीडिया अभी भी एक बड़े एग्रेसिव पोस्चर में यहाँ पे नजर आता है, जहां तक भारत की मीडिया की बात है। नदीम,
आसिम, ये बताइए कि पाकिस्तान की जो फिजाई हदूद थी वो बंद थी, अब क्या उन्हें खोल दिया गया है?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान के आज 4 एयरपोर्ट थे, उनको वहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर काम का आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद, पेशावर, इसके साथ साथ कराची और क्वेटा, ये 4 एयरपोर्ट थे जिनको दोबारा से खोल दिया गया है। अब से तकरीबन कोई 8,000 जो पैसेंजर्स हैं उनको वहां पर एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाया गया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि तकरीबन कोई 400 के करीब जो फ्लाइट हैं पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली वो उनको कैंसिल किया गया था, लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो काफी बेहतर होती जा रही है। अभी भी फिलहाल जब सेंट्रल पंजाब से जिसे आप कहा जाए कि जो वहाँ पर लाहौर के इसके साथ साथ मुल्तान, सरसाबाद के जो एयरपोर्ट हैं अभी तक ये मुकम्मल तौर पर बंद है, इनको मुकम्मल तौर पर शो नहीं किया जा सका। जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी वो पाकिस्तान में आना और जाना शुरू हो गई है, जिससे लोगों को काफी हो रही है। इसके अलावा वजीर आजम इमरान खान ने भी इस हवाले से ऐलान किया है कि जो दूसरे मुल्कों में फंसे पाकिस्तानी हैं उनको फौरी तौर पर वापस आने के लिए PIA जो है वो एक्स्ट्रा फ्लाइट चलाए और ताकि उनको तमाम अफराद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस लाया जा सके।
बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उस हवाले से हमारे साथ ही रितुल जोशी, जिससे अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने वहां पर कुछ लोगों से बात की है। आइए उन लोगों के तासुरात सुनते हैं।
हमें बहुत खुशी है, मैंने 11 बजे लेकर रात को 9 बजे तक टीवी लगा रखा है, जहाँ पर 9:30 बजे तक, जब तक वो आया नहीं तब तक अपना टीवी नहीं बंद करा हमने, तो हमें बहुत खुशी है, हमारे भारत वर्ष को बहुत खुशी है।
ये जो हुआ है ऑब्वियसली बहुत सारा फॉरेन प्रेशर से हुआ है, जो पॉलिटिकल सर्किट में था उनके, तो अगर वो प्रेशर ना रहा होता इंटरनेशनल कंट्रीज मतलब जैसे US से है, सो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा होगा, अदरवाइज पाकिस्तान छोड़ने वाला नहीं था।
उन्होंने जिस तरीके से हमारे IAF को रखा है और जो रिस्पेक्ट दी है उसे, जिसमें वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे बट उन्होंने नहीं किया, विच इज़ रियली गुड।
छोड़ते छोड़ते भी उन्होंने शाम के 9:30 बजा दिए रात के, तो आई थिंक इट इज़ नॉट ए गुड जेस्चर कि वो अगर उसे छोड़ना ही होता तो वो जब अपना टाइम था उसी टाइम छोड़ देता, बट वो लेट करता गया। और मैंने ये भी देखा कि ये कुछ वीडियो भी ट्रोल हो रहा है यूट्यूब पे कि उसको कुछ बुलवाया गया अगेंस्ट इंडियन आपका मीडिया और इंडियन, तो ये सब बेकार है, कुछ इंडिया पाकिस्तान बदलने वाला है नहीं।
प्रैक्टिकली विद इन 72 आवर्स हमारे पायलट वापस आ गए अपनी कंट्री में। I think they have also shown some large-heartedness, you know. They could have delayed the whole thing, लेकिन ठीक टाइम पर उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। हमारे लिए ये प्राउड मोमेंट है कंट्री के लिए।
आई थिंक दिस वॉज अ वेरी हाई लेवल डिप्लोमेटिक डिसीजन, इट इज समथिंग विच आई डोंट थिंक पाकिस्तान वुड हैव एग्रीड ऑन इफ मोदी जी वुड नॉट हैव पुट दैट प्रेशर ऑन देम।
आई थिंक इट इज़ अ गुड विल जेस्चर एंड गोइंग फॉरवर्ड इट माइट ओपन सम डायलॉग्स, because something positive has happened from their side which has never happened.
Isse ye indicate hota hai ki now we must respect the international law aur usme jo geneva conventions hain dono countries follow kar rahi hain, ye ek bahut acha step hai. Aur agar hame ye pata lagta hai ki abhinandan ke sath koi zor zabardasti nahi hui to it will be something worth appreciating.
पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जब तक भारतीय हुक्मरानों पर इलेक्शन का दबाव बरकरार है उस वक्त तक ख़तरे को खारिज अज़म खान करार नहीं दिया जा सकता। YC इजलास में सुषमा स्वराज को मदु करने से मुतालिक पाकिस्तान से मुशावरत नहीं गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम हथियार उठाने वाले और दहशतगर्दी को अपना ज़रिया बनाने वाले किसी भी ग्रुप को पाकिस्तान का हमदर्द नहीं समझते। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे अली राना को खसूसी इंटरव्यू देते हुए कहे। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज को OIC इजलास में बुलाना पाकिस्तान की सफारती नाकामी नहीं, उनकी तकरीर देखें तो उसमें कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं आता। सुषमा स्वराज की जानिब से एक बार फिर रियासती दहशतगर्दी का इल्ज़ाम किए जाने पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियां हमने दी हैं। उन्होंने OIC में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को बुलाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें मेज़बान मुल्क में ने दावत दी, उनका OIC से कोई ताल्लुक नहीं। सेक्रेटरी जनरल OIC का कहना है कि सुषमा को बुलाए जाने पर भी वो लाइल्म थे, उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात ने मदु किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि काश हमसे मुशावरत की जाती, लेकिन मुशावरत नहीं की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के भारत के साथ मरासम हैं, अमारात हमारा भी दोस्त है, लेकिन सुषमा के हवाले से तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया गया। हमें अमारात के साथ ताल्लुक का एहतराम है, अगर उनके इल्म में पलवामा की सूरत हाल होती तो शायद ऐसा ना होता। इस मौका पर उनके लिए दावत वापस लेना मुमकिन नहीं था। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने के सिलसिले में हम पर कोई दबाव नहीं था, पाकिस्तान ने फराख दिली का मुजाहरा किया है, हम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं जिसे पूरी दुनिया ने सराहा है। दूसरी जानब भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में मुनक़द होने वाली OIC के इजलास में तकरीर करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का किसी मजहब से टकराव नहीं है, दहशतगर्दी जिंदगियां तबाह कर रही है। सुषमा ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी मुखालिफ जंग किसी मजहब के खिलाफ हो ही नहीं सकती, इस्लाम का मतलब है अमन है। उन्होंने अपनी 17 मिनट की तकरीर में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि अगर हम इंसानियत को बचाना चाहते हैं तो हमें इन मुल्कों से जो दहशतगर्दी को पनाह और सरमाया फ्राहम करते हैं कहना चाहिए कि वह अपने मुल्क में दहशतगर्दी के तरबियत कैंपों और बुनियादी ढांचों को तबाह करें और दहशतगर्द ग्रुपों को सरमाया फ्राहम करना बंद करें। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने भारत से संतोष भारतिया, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्हें दावत दी है प्रोग्राम में। वेलकम टू द शो सर।
शुक्रिया।
भारतिया जी, ये बताइए, पाकिस्तान ने जो भारतीय पायलट है उसको गुज़स्ता रोज़ रिहा कर दिया, भारत के हवाले कर दिया, इस जेस्चर को भारत में किस तरह देखा जा रहा है? क्या अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो कशीदगी कम होने के चांसेस हैं?
देखिए, हम इसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिहा किया है, अब वो हर आदमी अलग अलग तरह से क्लेम कर रहा है, लेकिन मैं इसे पाकिस्तान का गुडविल जेस्चर कहूंगा और इसको मैं तो वेलकम करूंगा। हालांकि हमारे यहाँ के सारे टेलीविजन चैनल इसके खिलाफ बोल रहे हैं और शायद सरकार भी इसे अभी नहीं माने, लेकिन इतना मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक अच्छा कदम उठाया।
ये बताइए, पाकिस्तान ने तो ये भी कोशिश की थी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने, कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वो फ़ोन पर बात करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या ये उन्होंने अच्छा किया?
देखिए, आपको माहौल समझना पड़ेगा। पाकिस्तान का माहौल एक है, पाकिस्तान में हर जगह जुलूस निकले हैं, नो वार और जंग नहीं चाहिए, वो अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे, इंडिया को भी मैसेज भेज रहे थे, ये पाकिस्तान का माहौल था। इंडिया का माहौल ये था कि यहाँ पर जिस तरह से दहशत गर्दी वाली वारदात हुई, जिसमें पुलवामा में हमारे लगभग 45 लोग मारे गए और बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से लगातार फायर एक्सचेंज हो रहे हैं, उसको देख करके इंडिया में एक बहुत गुस्से का माहौल था और जाहिर है सरकार भी उसके प्रेशर में थी। तो सरकार एक चीज बार बार कह रही है और जिस चीज को पाकिस्तान के मिनिस्टर कुरैशी साहब एडमिट कर रहे हैं कि उनके पास जैश मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर है, उसकी तबीयत खराब है, उसका इलाज चल रहा है आर्मी हॉस्पिटल, मतलब वो आपकी पूरी कस्टडी में है, तो आप ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते। आप ये कहिए कि वो ठीक हो जाएगा तो हम भारत को सौंप देंगे, क्योंकि उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमने ये वारदात कराई 40 लोगों को मारने की जो हमारे CRPF के लोग जा रहे थे। अब जब वो एडमिट कर रहा है तब भी आप कह रहे हैं कि हम आपको सबूत दें, इसको लेके इंडिया में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा था। तो इसलिए हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुल्क के उस प्रेशर को देखते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात न की हो, उनको अवॉइड किया हो। और बार बार जो सुषमा जी ने आज कहा, जिनकी आप मुझे अभी क्लिपिंग सुना रहे थे, कि इमरान खान सब साहब खुद पिछली बार ये कह चुके हैं साफ तौर पर कि उनका देश भी इसका शिकार है। तो अगर शिकार है तो जो आपके यहाँ ग्रुप्स हैं जो वारदात करते हैं ये दहशतगर्दी के, आप उन ग्रुप्स को क्यों नहीं रोकते, उनको क्यों खत्म नहीं करते? अब जो अभी यहाँ हुआ जाबा टॉप के ऊपर जो खबर आई है कि लगभग 35 के करीब पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर उसमें हलाक हुए हैं, कर्नल लेवल तक के। अब ये जो बम गिरा इंडिया का, अब ये सारी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर पाकिस्तान इससे अपने को परेशानी फील करता है, इन सारी वारदातों से इनका अपने को शिकार समझता है, तो उसे तो फिर साथ देना चाहिए ना। और इंडिया में जैश ए मोहम्मद को लेकर के या जो दो तीन बड़े संगठन हैं जो पाकिस्तान में ही बन रहे हैं और वहां से वारदात कर रहे हैं, उसको लेके देखिए इंडिया में बहुत गुस्से का माहौल है।
जी संतोष साहब,
कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों के गुस्से को अनदेखा नहीं कर सकता।
बिल्कुल ठीक भारतीय जी, एक आप हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है सहर खान ने, यहाँ से वाशिंगटन में केटो इंस्टीट्यूट से वाबस्ते हैं, जनूबी एशियाई अमूर की माहिर हैं। वेलकम टू द शो सहर।
थैंक यू जी।
सहर, जैसा कि संतोष भारतीय कह रहे थे कि पाकिस्तान इसरार कर रहा है कि आप भारत से कह रहे हैं कि आप हमें अगर कोई प्रूफ्स हैं इस इन ग्रोहों के ख़िलाफ़ या जिन लोगों ने कार्रवाई की है तो वो हमें फ्राहम करें, हम कार्रवाई करेंगे। आप यहाँ पे जब बैठ के देखती हैं इस सारे किसे को, तो आपको कितना जायज़ लगता है ये मुतालबा पाकिस्तान का?
लेकिन बात ये कि इस सिलसिले में बेशक पाकिस्तान चाहिए कि सबूत देना चाहिए हिंदुस्तान को, लेकिन हम माजी में भी देख चुके हैं कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सबूत दिया है तो पाकिस्तान ने बहुत कम एक्शन दिया है। ये हमने देखा था 2008 में लश्कर तैयबा के खिलाफ, जैश मोहम्मद जो है वो पार्लियामेंट ने 2001 में अटैक किया था, और हमें ये हम देखते आए सीरीज में, पूरे सीरीज में। तो मेरे ख्याल में अगर बेशक अगर हिंदुस्तान दे भी दे पाकिस्तान को सबूत, जो पूरी दुनिया देखना चाह रही है पाकिस्तान से, वो ये है कि वो जैश मोहम्मद के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे क्या नहीं लेंगे। अब हमने देखा था कि सदर जब परवेज मुशर्रफ सिर्फ सदर थे, उन्होंने बैन किया था जैश मोहम्मद लीडरशिप को, लेकिन उसके बाद से जैश मोहम्मद जो है वो पाकिस्तान में बहुत फ्रीली ऑपरेट करती है, और जो मसूद अजहर साहब हैं वो भी बहुत फ्रीली ऑपरेट करते हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ा मसला सिर्फ ये भी नहीं है कि हिंदुस्तान सबूत दे, ये तो हम सबको मालूम है कि जैश मोहम्मद की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में वो आज़ादी से टिकती है। तो अब ये देखना होगा कि वज़ीर आज़म खान जो हैं वो अब कोई एक्शन लेंगे जैश मोहम्मद के खिलाफ या नहीं लेंगे।
सहर, पाकिस्तान और भारत के मामले में यहाँ पर हमने सुना, हमने ट्रंप की स्टेटमेंट भी देखी, हम ये भी जानते हैं कि कुछ मुल्क जो हैं वो एक्टिवली इस सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। टर्की है, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आने वाले हैं, सदर ट्रंप ने भी कहा कि वो भी किसी ना किसी लेवल पर उनका भी मुल्क जो है अमरीका उसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका की जब हम बात करते हैं कि कोई रोल प्ले करे, कितना लेवरेज है अमेरिका के पास?
अभी फिलहाल मेरे ख्याल में अमेरिका के पास लेवरेज थोड़ा सा कम है, और इसकी वजह यह है क्योंकि पहली दफा हम देख रहे हैं सदर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के तालिबान के साथ पहली दफा अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं और काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के तो कम से कम इंटरेस्ट में यह है कि वो पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डाले, क्योंकि उसने पहले भी पाकिस्तान से पूछा था कि अगर वो तालिबान के साथ मदद कर सकते हैं क्या नहीं। तो मेरा सेंस ये है कि बेशक जो सदर ट्रंप हैं वो ये कहेंगे कि भाई डीएस्केलेशन होनी चाहिए, कोई भी नहीं चाहता कि जौहरी हथियार इस्तेमाल हों, और दोनों ममालिक के पास हैं जौहरी हथियार। लेकिन जहाँ तक ये है कि सदर ट्रंप ज़्यादा पाकिस्तान से कहेंगे या ज़्यादा सख्ती से बात करेंगे, मेरे ख्याल में ज़्यादा सख्ती अख्तियार नहीं करेंगे। और वैसे भी अगर आप माजी में देखें तो सदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के साथ सख्ती ही इख्तियार की है, पिछले साल भी सिक्योरिटी और मिलिट्री एड को कम किया गया है, बहुत डिबेट हुई है कि पाकिस्तान का जो नॉन نیٹو سٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہمیشہ پچھلے سال سے کم از کم ٹینشن رہی ہے, تو میرے خیال میں وہ ٹینشن بڑھے گی نہیں. لیکن کیونکہ امن مذاکرات افغانستان میں آگے جا رہے ہیں, میرا سنس یہ ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان کو زیادہ ایگریویٹ نہیں کریں گے.
سہر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, ایک سوال اور میں آپ سے بعد میں کروں گا, پہلے میں بھارتیا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. سر یہ بتائیے, بھارت میں ابھی انتخابات ہونے والے ہیں, نریندر مودی کی کچھ ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں, کیا پلوامہ نے نریندر مودی کو موقع دیا ہے کہ وہ ایک طاقتور لیڈر جو ہے وہ بن کر اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرے؟ اس طرح کے بھی تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ ان کو ایک اپرچونیٹی مل گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیے اپارچونیٹی مل گئی, اگر ملی ہے تو اس سچویشن نے دی ہے جو سچویشن جیش محمد نے پیدا کی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں, نہ آپ کہہ رہی ہیں, نہ سہر صاحب کہہ رہی ہیں, سہر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نریندر مودی نے خود یہ کانڈ کرا دیا پلوامہ کا, اس کو جیش محمد نے کرایا. یہ صاف ہے, ثبوت ہیں, جیش محمد کا بیان ہے سیدھا سیدھا جو پاکستان میں رہ کے اس واردات کے ایک دو گھنٹے کے بھیتر انہوں نے دیا کہ ہم نے یہ کرایا. تو اس سچویشن کو تو نریندر مودی نے نہیں پیدا کیا, اس سچویشن کو تو جیش محمد نے پیدا کیا. اب اس کو لے کر کے نریندر مودی کے کوئی اور بھی پرائم منسٹر ہوتا, میں کہتا ہوں راہل گاندھی ہوتے, ان کو بھی یہی قدم اٹھانے پڑتے جو نریندر مودی اٹھا رہے ہیں. نریندر مودی ہندوستان میں رہ کر یہ برداشت نہیں, یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے 40-45 سولجرز مارے جائیں اور پھر وہ ٹاک کی بات چیت کریں. اسی لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ نہ کوئی بات چیت کی, نہ جو عمران خان کی طرف سے جو میسج آیا, نہ انہوں نے اس کا مطلب جواب دیا. ان کی ایک ہی شرط ہے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں.
تو بھارتی صاحب یہ بتائیے, اب ٹینشن تو ہے دونوں ملکوں کے درمیان, لڑائی بھی ہو رہی, جھڑپیں ہو رہی ہیں, کیا طریقہ ہے اس, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے دونوں ملکوں کے اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے؟
سر ایک ہی طریقہ ہے, اگر ٹینشن سے نکالنا ہے فوراً ریلیز ہو جائے گا. آپ جیش محمد کے, آپ کہیے کہ جیش محمد کا سرگنا ہماری گرفت میں ہے, اریسٹ ہے, اس کی طبیعت جیسے ہی ٹھیک ہوتی ہے ہم اسے انڈیا کو سونپ دیں گے. آپ کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے, دیکھیے ٹینشن کل سے ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ جو کہیں اس کے اوپر آپ عمل کیجئے. لیکن آپ اس کے لیے اپنے بامبرز بھیج دیں, چونکہ اس کے ہائیڈ آؤٹس پہ اٹیک ہوا تو آپ بامبرز بھیج دیں یہاں پر انڈیا پہ اٹیک کرنے کے لیے, یہ تو مناسب چیز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کی سرکار, پاکستان کی ملٹری, یعنی میں تو سرکاری کہوں گا, جیش محمد کے ساتھ کھڑی ہے, اس کو انڈیا کیسے برداشت کرے گا آپ بتائیے.
پاکستان کا تو یہ کہنا ہے کہ آپ جو ثبوت ہیں وہ ہمیں فراہم کریں اور ہم خود کاروائی کر لیں گے. جی سر, بھارتی صاحب
نیچرل لا کے خلاف ہے,
بہت شکریہ. لیکن پاکستان یہ بھی تو الاؤ نہیں کرے گا نا کہ اس کی جو حدود ہیں وہ کراس کر کے انڈین فورسز جو ہیں آ جائیں اور وہاں پہ ایکٹیویٹی کریں, یہ بھی تو قبول نہیں ہے.
دیکھیے وہ تو نہیں, بالکل الاؤ نہیں کرے وہ, لیکن انڈیا نے کہاں پہ اٹیک کیا؟ کیا پاکستان کی سول
ایل او سی کراس کی نا جی انہوں نے؟ بہت شکریہ بھارتیہ صاحب. سحر یہ بتائیے, دونوں ملکوں کے میڈیا کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں ایک بالکل لچکدار رویہ بالکل نہیں ہے دونوں جانب, اور سوشل میڈیا پر بھی بہت آج کل جو جس طرح سوشل میڈیا ایکٹیو ہے اس میں بہت رول ہے دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں. جو ڈپلومسی ہونی چاہیے اس سارے کانفلکٹ میں, اس سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے, کیا وہ آپ کو نظر آتا ہے وہ ہو پا رہی ہے؟
زیادہ تر کام میڈیا کی بات ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دونوں ممالک کے جو میڈیا ہیں وہ ایک دم انہوں نے جیسے اس ایشو کے اوپر جمپ کیا, اور میں نے یہ دونوں بھارت کی بھی میڈیا میں بھی دیکھا اور پاکستانی میڈیا میں بھی دیکھا کہ بہت زیادہ جذباتی اور ایک دم سے بہت زیادہ بات ہو رہی تھی جنگ کے بارے میں. اور جب انڈیا نے بھی ایل او سی کراس کی, جب پاکستان نے بھی ایل او سی کراس کی, تو دونوں سائڈ کی میڈیا جو تھی ایک دم سے آپ سمجھے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. مجھے یہ ساری باتیں پرسنلی تو بہت عجیب لگتی ہیں کہ جنگ جو ہے وہ کسی چیز کو سالو نہیں کرتی, اور دونوں پاکستان اور ہندوستان آپس میں 3 جنگیں تو لڑ چکے ہیں اور انہوں نے بہت بڑی پرائز دی ہے ہر جنگ میں. تو اس دفعہ جو میڈیا میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ایک دم سے سیلیبریشن ہو رہا ہے, مجھے ذرا افسوس ہوا دونوں طرف کی میڈیا کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کے بھی اور ہندوستان کے بھی. اب جہاں تک ڈپلومیسی کی بات ہے, دیکھیں بے شک وزیر اعظم عمران خان نے دو تین دفعہ پرائم منسٹر مودی سے کہا کہ وہ آئیں اور یو نو ٹاکس ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. کم از کم وزیر اعظم خان نے ذرا ڈپلومیسی کا زیادہ آئی گیس یو نو زیادہ پریفرنس دکھائی ہے. جو پرائم منسٹر مودی ہیں انہوں نے میرے خیال میں زیادہ ڈپلومیسی استعمال نہیں کیا. اب اس کے آپ سمجھیں کہ دو اینگلز ہیں. ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو کیونکہ شاید انٹرنیشنل پریشر تھا, انہوں نے پائلٹ کو بھی ریٹرن کر دیا, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ہم ٹاکس کرنا چاہتے ہیں. کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے شک وزیر اعظم خان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امن مذاکرات شروع ہوں. جہاں تک مودی کی بات ہوتی ہے, دیکھیں دو مہینے میں ہندوستان میں الیکشن ہو رہا ہے اور پرائم منسٹر مودی نے ہمیشہ ایک بہت ہی ہارڈ لائن اپروچ استعمال کیا ہے پاکستان کی طرف. ہمیں دو تین سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں خبروں میں کہ بی جے پی کے ویریس لیڈرشپ جو ہے وہ کہتی آئی کہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہوگی اور پاکستان کے ساتھ اس وجہ سے جنگ ہوگی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ انتہا پسند اور دہشت گردوں کا استعمال کرتا ہے ہمارے سوئل پہ. تو اب یہ ابھی تک مودی صاحب نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ وہ ڈپلومیسی استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مجھے ذرا پریشان کن بات لگتی ہے کیونکہ بے شک الیکشن کے لیے ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف ایک ہارڈ لائن اپروچ دکھائیں اور بھارت کی پاپولیشن کو دکھائیں کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جن میں پولیٹیکل ول ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے اٹیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھے جائیں تو یہ ہیز پلینگ اے ڈینجرس گیم جیسے کہتے ہیں, کیونکہ جنگ شروع کرنے سے نہ تو کوئی فائدہ ہوگا اور جنگ شروع کرنے سے کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ جیش محمد اور لشکر طیبہ اور اس طرح کے جو گروپس ہیں وہ دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے. اور سب سے بڑی بات جو ہم عام طور پہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ جو ہندوستان کشمیر میں کر رہا ہے, ہندوستانی فورسز جو ہیں کشمیر میں بہت عرصے سے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. یہ جو ڈسکشن ہے کشمیر کے بارے میں یہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اور جب ہم پاکستان کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو بیسکلی مین پوائنٹ یہ ہے کہ ڈپلومیسی استعمال ہونی چاہیے اینڈ ہوپ فلی وزیر اعظم مودی جو ہیں ڈپلومیسی میں ویلیو دیکھیں گے ایون دو ان کو الیکشن لڑنا ہے.
سحر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم آلویز تھینک یو اور آلویز ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کا.
تھینک یو جی,
بہت شکریہ.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
سامعین جیسا کہ آپ ابھی سن رہے تھے, ہمارے جو تجزیہ کار تھے وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ دونوں ممالک جو ہیں ان میں جو کشیدگی کا ایک صورتحال ہے اس میں میڈیا کا بہت کردار جو ہے وہ زیر بحث رہا ہے. میڈیا کی طرف سے جذبائے حب الوطنی کہیں یا کہیں ریٹنگ کی دوڑ, ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خاطر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان وار ہسٹیریا قائم کرنے میں ان چینلز کو مرد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. اس بارے میں پاکستان سے ہمارے ساتھی عاصم رانا نے ایک رپورٹ بھیجی ہے.
پاک بھارت کشیدگی ہو اور میڈیا چینلز خاموش رہیں, ایسا ممکن نہیں. حالیہ کشیدگی کے دوران دونوں ممالک کے بالخصوص ٹی وی چینلز نے ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے. اگر اس کام میں کوئی شخص تحمل کی بات کرتا تھا تو اسے کم حب الوطن یا غدار سمجھا جاتا رہا. ان تابڑ توڑ حملوں کی زد میں اکثر سچائی کہیں دور رہ جاتی ہے. بعض اوقات ان چینلز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اگر انہیں ایک دوسرے کے سامنے آنے کا موقع ملے تو شاید فوج کو زحمت ہی نہ دینی پڑے, اور یہ اینکرز خود ہی پاک بھارت تمام معاملات لڑ کر حل کر لیں گے. لیکن ریٹنگ کی اس دوڑ نے دو ایٹمی طاقتوں کے عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا اور نفرت کی دیواریں بلند کر دیں. سینئر اینکر طلعت حسین کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں پاکستانی میڈیا نے تحمل کا مظاہرہ کیا لیکن حالات کے مطابق اپنا انداز بھی بدلتا رہا.
جنگ کے بادل امڑتے ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں تو ممالک کا میڈیا نیشنلزم کا شکار ہو جاتا ہے, اور صرف یہ معاملہ پاکستان ہندوستان تک ہی محدود نہیں ہے. ہم نے امریکہ کی میڈیا کو مختلف قسم کی بے وقوفانہ جنگوں کے اندر اپنی فوجوں کو جھونکتے ہوئے دیکھا ہے, معلومات کو ڈسٹارٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. غیر ضروری وار ہسٹیریا جس کو کہتے ہیں کہ جائیں اور چھلانگ لگا دیں اور ان کی ایسی کی تیسی کر دیں, ٹیک دا وار ٹو دا ہارٹ آف انڈیا, وہ باتیں نہیں ہوئی. نہ کسی نے وار رومز بنائے ہیں, ना किसी ने जर्नलों से बिठा के कि जी न्यूक्लियर वेपन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, कौन कौन से शहर हमने टेकआउट करने, ऐसी कोई बात नहीं हुई।
जंग की सूरत हाल में मीडिया अवामी जज्बात बनाने में किरदार अदा करता है। समा टीवी के कंट्रोलर न्यूज अहमद वलीद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि हालिया दिनों में पाकिस्तान फौज और हुकूमत पाकिस्तान का बयानिया अमन का था, जिसकी वजह से तमाम मीडिया ने अमन की ही बात की। ऐसी सूरत हाल में मीडिया का कौमी जज्बात में आना मुमकिनात में से है।
पाकिस्तान का जो मीडिया है, चाहे इंडिया का भी, वहाँ भी तो बहुत बड़ा होता है एस्टेब्लिशमेंट का, वो भी चाह रहे होते हैं कि क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड किया तो वो उस नैरेटिव को साथ लेके चले। तो पाकिस्तान में भी मीडिया के ऊपर ये प्रेशर रहा है, ऑब्वियसली मुख्तलिफ तरीकों से रहा है कि आपका जो नैरेटिव है उसके साथ लेके चले चैनल जो है। ओवरऑल इमरान खान का या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल था वो था कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, तो उसी तरह से पाकिस्तान के मीडिया ने भी बिहेव किया।
मीडिया इस कशीदा सूरत हाल में कई गलतियों का भी शिकार रहा, जहाज के टुकड़े हों या एक दूसरे की सरहदों के हवाले से गलत फहमी, इसमें मीडिया की तरबियत में कमी नजर आई। पाक फौज के शोबे तालुकात आमा के साबिक डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सौलत रजा कहते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल रहने की वजह से पाकिस्तानी मीडिया की तरबियत होती रही, जिसकी वजह से ऐसी गलतियां पाकिस्तान में कम देखने में आई।
ये वॉर ऑन टेरर की वजह से तकरीबन 15 बरस से हमारे यहाँ एक लिहाज से आप देखें तो हालत जंग में है, और इस दौरान जहाँ हमारी मुसल्ला अफवाज की तरबियत हो रही है तो हमारे जो मीडिया पर्सन हैं वो भी जंग को बहुत करीब से देखे, उन्होंने देखा है, और ख़ास तौर पर ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी इसमें जो तबाही हुई है, जो नुकसानात हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मीडिया जो है इस मीडिया भी हमारा जिसे कहना चाहिए कि बैटल हार्डन्ड हो गया है, और हमारे जो प्रोफेशनलिज्म है वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर है।
मीडिया की इस जंग में कौन हारा या कौन जीता इसका फैसला ना हो सका, लेकिन इस मीडियाई जंग ने खत्ते के अवाम के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत के जो बीज बोए शायद इनको निकालने में एक अरसा लगे। अली राणा, उर्दू वीओए, इस्लामाबाद।
सामिन, भारत पाकिस्तान कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया बिलखसूस न्यूज़ चैनलों का रवैया उनका भी इंतहाई काबिल एतराज़ रहा, जिसकी मजम्मत संजीदा सहाफ़ी और तजियाकार कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने भी मुबाहसों के दौरान मुबैना तौर पर आवाम में जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश की और नाम नहाद कौम परस्ती के आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ इश्तआल अगेज प्रोपागेंडा किया। इस बारे में तफसीलात दे रहे हैं सुहेल अंजुम।
भारत पाक कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग के अंदाज पर संजीदा हलकों में तशवीश, मीडिया को खुद एहतसाबी की जरूरत, माहिरीन की राय। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। नई दिल्ली के संजीदा हलकों के ख्याल में भारत पाक कशीदगी के दौरान मीडिया ने इंतहाई इश्तियालंगेज जबान इस्तेमाल की और आवाम के दरमियान जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश की। बेशतर चैनलों ने अपने यहाँ वार रूम बना रखे थे और वो ग्राफिक्स और तस्वीर के सहारे पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहे। एंकरों ने पुरजोश अंदाज में उनके अल्फाज में पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही और सहाफती अखलाकियात को नज़रअंदाज करके गैर मुतवाजिन ज़बान इस्तेमाल की। एक न्यूज़ चैनल का एक एंकर फौजी वर्दी में आया और खिलौना पिस्तौल के साथ रिपोर्टिंग करने लगा। एक सीनियर सहाफ़ी और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साबिक सदर गौतम लाहरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि भारत पाक कशीदगी के दौरान मीडिया को तहमुल से काम लेना चाहिए था। उनके बकौल इस दौरान जो तबसरे हो रहे थे वो सहाफ़ती दायरे कार से बाहर थे। बहुत से एंकर जर्नलिस्ट नहीं एक्टिविस्ट लग रहे थे और वो एक ख़ास सियासी जमात के नज़रियात की तबलीग करते रहे। गौतम लाहरी ने मजीद कहा कि जैश मोहम्मद के हमले की मजम्मत तो की जानी चाहिए, लेकिन आवाम के दरमियान गुस्सा और नाराजगी पैदा करना ठीक नहीं है।
लेकिन साथ साथ ये जनता का बीच में जो आक्रोश पैदा करना, इसके लिए सरकार के लिए भी मुश्किल हो रहा था। सरकार के तरफ से भी बहुत सारे एडवाइजरी जारी किया था, आप ऐसा कुछ प्रचार मत कीजिए देश में तनाव पैदा हो। होम मिनिस्ट्री के तरफ से, गृह मंत्रालय के तरफ से भी एडवाइजरी किया था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया मीडिया ने। मीडिया का खासतौर पर जो रोल था, खासतौर पर दिल्ली में नेशनल मीडिया, कुछ मीडिया छोड़ के, ये जर्नलिस्टिक काम इन्होंने नहीं किया, मेरा मानना ही है।
सीनियर सहाफी और एक मारूफ अंग्रेजी अखबार मिल्ली गजट के एडिटर डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने वीओए से बात करते हुए कहा कि यहाँ के बिस्तर मीडिया इदारे हिंदुत्व के हामी हो गए हैं। वो हर खास मौके पर नफरत अंगेज माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं और अगर किसी मामले का ताल्लुक कश्मीर या पाकिस्तान से हो तो उनके रवैये में मजीद शिद्दत आ जाती है। इस वक्त भी वो लोग यही करते रहे और वो पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी पर उतर आए।
मीडिया को तो चाहिए था कि अगर आग लगी है तो उसको बुझाए, अगर मसला है तो उसे खत्म करे, अगर मंदी की बात करे, नहीं है कि उल्टे जो है आग लगाने वाली बात करे। तो ये चीज नामनासिब है बिल्कुल से, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ही में ऐसा हो रहा है और दूसरे मुल्कों में हम नहीं देखते, मगरबी मुल्कों में ऐसा नहीं देखते। मीडिया फौरन हुकूमत को पकड़ता है, हुकूमत की गिरफ्त करता है कि वो ऐसी बातें न करे। खुद देखिए ट्रंप के खिलाफ कितना वहाँ का मीडिया बोल रहा है मुस्तकिल, लेकिन हमारे यहाँ उसकी हालत दूसरी है। इसलिए
स्टूडियोज में मुबाहसे के लिए जिन दिफाई तजिया कारों को मदऊ किया जाता उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की होती जो अमन और मुजाकरात के बजाय जंग की वकालत करते रहे। उनमें ज्यादातर साबिक फौजी ओहदेदार रहे, बेशतर हुकूमत के मौकिफ का इदा करते रहे कि बातचीत का वक्त निकल चुका है। सीनियर सहाफी पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ने अपने एक टीवी प्रोग्राम में न्यूज चैनलों की जबान पर सख्त एतराज किया।
लेकिन इन सबसे इतर जो सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है कि युद्ध कर दें और युद्ध इसके बाद तो हमला हो गया, लगता है जैसे चैनलों को युद्ध लड़ने जाना है और न्यूज चैनलों के जरिए जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है युद्ध के मद्देनजर, उससे लगता है रक्त रंजित ये पूरे देश की धरती को चली है और कश्मीर को लेकर आज नहीं तो कल युद्ध हो जाएगा हमें लगता है।
लेकिन इसी दौरान बास चैनलों और सहाफियों की संजीदगी भी दिखाई दी। एनडीटीवी इंडिया से वाबस्ता सीनियर एंकर और सहाफी रविश कुमार ने भी न्यूज चैनलों की जबान पर एतराज किया। उन्होंने मीडिया रिपोर्टिंग पर प्राइम टाइम में दो प्रोग्राम किए और मेन स्ट्रीम मीडिया के तरीक़ेकार पर जमकर तनकीद की। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम का आगाज इन अल्फाज में किया कि भारत और पाकिस्तान के इस टकराव में सबसे जोरदार धमाका किसी बम का नहीं, किसी तैयारे का नहीं, MiG-21 का नहीं, F-16 का नहीं, 1000 किलो के बम का नहीं, बल्कि दोनों मुल्कों के मीडिया का है। उन्होंने बास चैनलों की सुर्खियों की निशानदेही करते हुए कहा,
एक चैनल कहता है गर्जा हिंदुस्तान कांप गया पाकिस्तान, दूसरा चैनल कहता है कल घुसकर मारा आज घुसने पर मारा, तीसरे चैनल की सुर्खी है डर के मारे बातचीत चाहता है पाकिस्तान, और चैनल गरज रहा है कि भारत में घुसोगे तो मारे जाओगे, एक चैनल का दावा है कि नक्शे से पाक साफ हो जाएगा, एक कह रहा है कि अब पाकिस्तान का फाइनल इलाज होगा, एक चैनल देश की सबसे बड़ी बहस चला रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जाओ भाई तोड़ो, छोड़ो मत किसी को, एंकर स्टूडियो में क्या कर रहे हो, सीमा पर जाओ।
मुतअद्दिद सीनियर सहाफियों और तजियाकारों ने सूरत हाल को बदलने पर जोर दिया है। उनके ख्याल में नेशनल मीडिया को खुद एहतजाबी की जरूरत है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
सामिन, हमारे नुमाइंदों की आप खबरें सुन रहे थे जो कि मीडिया के किरदार के हवाले से थी। अब हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदों मुजफ्फराबाद से रोशन मुगल ने और श्रीनगर से यूसुफ जमील ने। दोनों मेहमानों को खुश आमदीद,
शुक्रिया।
रोशन, पहले आप बताइए वहाँ पर क्या सिचुएशन है, जहाँ आप मुजफ्फराबाद में हैं एलओसी के इर्द गिर्द क्या मूवमेंट हो रही है?
कि जब से ये बालाकोट हमले वाला है उसके बाद कंट्रोल लाइन के ऊपर सख्त गोलाबारी शुरू हो चुकी है, दोनों तरफ गोलाबारी हो रहा है और रात के वक्त तो कल शाम तक इसी तरह से गोलाबारी होती रही। इस सारे के दौरान लोग जो आगे सरहदी इलाकों में रहते हैं वो लोग उनको बड़ी बड़ी तादाद में उन लोगों को अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर मुंतकिल होना पड़ा है। इन लोगों का आलम यह है कि ये लोग गरीब लोग हैं ज्यादातर, और ये अपना इनका ओढ़ना बिछोना और इनका जो कुछ इनकी जमा पूंजी वो इनके माल मवेशी है। अब वो माल मवेशियों को बाज रिपोर्टें ऐसी कि बेचारे ओने पौने दामों बेचकर अपनी जाने बचाने के लिए दूसरे इलाकों में जा रहे हैं, और कुछ इलाकों में ऐसे हैं कि जहाँ पे उनके पास ना कोई मोर्चा है और ना कोई वो बेचारे अपना मोर्चा बना सकते हैं और ना अपने माल मवेशी को कहीं ले जा सकते हैं, की वजह से वो मजबूरन वहीं पे बैठे हुए हैं। और अब हुकूमत की तरफ से पिछले दो तीन दफा इन लोगों जब कंट्रोल लाइन के ऊपर होता है कि गोलाबारी का सिलसिला शुरू होता है तो उस वक्त कहा जाता है जी कि इनको बैंकर बना के दिए जाएंगे, मोर्चे बना के दिए जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। हमने जब भी कंट्रोल लाइन पे एक दो दफा
इस दौरान गए तो लोगों का सबसे ज्यादा वहां पे ये कंसर्न था जी कि होप था उनमें कि एक तो ये काम शुरू हो चुका है, गोलाबारी शुरू हो चुकी है और अब हमारे ना मोर्चा है ना हमारे पास कोई भागने के लिए कोई आगे कहीं और कहीं के लिए हमारे पास ज्यादातर लोग।
बहुत शुक्रिया रोशन, बहुत शुक्रिया। यूसुफ आप बताइए, आप श्रीनगर में हैं, हमने सुना खबरों में कि एलओसी पर जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहाँ हमने मालूम है कि फायरिंग हुई और मजीद दोनों साइड्स पर लोग जो हैं वो हलाक हुए, लेकिन जो आम लोग हैं उनकी जिंदगियों के बारे में बताएं, वो किस तरह से मुतासर हैं, आम लोग कितने परेशान हैं, क्या चेंज आई है आम लोगों की जिंदगियों में वहां पर?
जी, भारतीय फिजाइया की तरफ से बालाकोट में की गई कार्रवाई और उसके जवाब में पाक फिजाइया की तरफ से भारतीय में तैयारे को गिराने और इस हवाले से पेश आने वाले दूसरे वाकयात ने भारत के जेरे निजाम कश्मीर में खौफ हिरास की एक नई लहर दौड़ा दी। लोग खासे परेशान हैं और ये एक दूसरे से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या जंग होगी या नहीं होगी। पुलवामा हमले के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के बीच यहाँ हुकूमत ने चंद ऐसे अहकाम सादर किए जिनसे लोगों में घबराहट मजीद फैल गई। मुतलका महकमों से एशियाई खुर्दनोश और अद्वियात वगैरह जखीरा करने के लिए कहा गया था और हुकूमत ने पेट्रोल डीजल खाना पकाने वाली गैस की राशनिंग का भी ऐलान किया। इन ऐलानात और अहकाम के पस मंजर में लोगों ने इन चीजों का जखीरा करना शुरू कर दिया, बाजारों में अफरा तफरी देखने को मिली। इस दौरान ज़राए इब्लाग के एक हिस्से ने यह खबर दी कि सरकारी महकमों की तरफ से अशय खुर्दनोश और अद्वियात का जखीरा इसलिए किया जा रहा है ताकि वादी कश्मीर पहुंचने वाली मजीद सप्लाई को मुसल अफवाज के लिए महफूज रखा जा सके।
ये बताइए, कुछ हमने खबरें देखी थी कि लोग वहां से दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो रहे हैं गोलाबारी की वजह से, कितनी मूवमेंट है, कितने लोग हैं जो मूव हो रहे हैं?
जी, असल में अगरचे तरफैन के दरमियान फायरिंग और शेलिंग का होना कोई नई बात नहीं है, ये वाकयात पहले भी होते चले आए हैं और हलाकतें पहले भी हुई हैं, लेकिन जो जिस माहौल में जिस पस मंजर में ये सारी सूरत हाल पेश आ रही है उससे लोगों में खौफ हिरास बढ़ गया है और दोनों तरफ रोशन मुगल साहब भी जानते हैं वहां भी माइग्रेशन हुई है, यहाँ भी लोग महफूज मकामात को मुंतकिल हुए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो तीन इलाके हैं जहाँ बड़ी तादाद में लोग महफूज मकामात को मुंतकिल हुए हैं, एक तो उड़ी का इलाका, उड़ी चकोटी का इलाका, कमलकोट का इलाका, वो उड़ी जो शहर है वहाँ सरकारी एक सरकारी स्कूल में और दूसरी इमारतों में उन्होंने पनाह ले रखी है, और पुंछ और राजौरी के इलाकों में भी लोगों ने नकल मकानी की है।
बहुत शुक्रिया।
इलाकों में खौफ हिरास है लेकिन नकल मकानी करने का सिलसिला भी वहाँ शुरू नहीं हुआ है।
बहुत शुक्रिया यूसुफ। ये थे यूसुफ जमील श्रीनगर से, और इससे पहले रोशन मुगल हमें मुजफ्फराबाद से, जो LOC के गिर्द आम लोग हैं उनकी जिंदगियां इस लड़ाई, इस चपक्लेश, इस तनाव की वजह से किस तरह मुतासर हैं वो हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया।
उर्दू VOA के फेसबुक पेज पर अब न्यूज बुलेटिन भी, पीर से जुमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8, 9, 10 और 11 बजे। हमारे फेसबुक पेज की ID है www.facebook.com/voaurdu।
चंद रोज पहले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में खारजा अमूर की कमेटी की एक समात हुई जिसमें सद ट्रंप की खारजा पॉलिसी का जायजा लिया गया। अमरीका की साबिक वजीर खारजा मैडलिन ऑलब्राइट ने एक माहिर के तौर पर ट्रंप इंतजामिया की मुदत के वस्त में दुनिया भर में अमरीकी खारजा पॉलिसियों का तज्जिया पेश किया और अराकी ने कांग्रेस के सवालात के जवाब दिए, लेकिन इस समात में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर कोई खास बातचीत नहीं हुई। मगर समात के बाद मेरी जिन अराकी ने कांग्रेस से बात हुई उन सब ने हालिया वाकयात पर तश्वीश का इजहार किया। इलियट इंगल ऐवान नुमाइंदगान में खारजा अमूर की कमेटी के चेयरमैन हैं।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी महाज आ रही होती है तो मैं बहुत फिक्रमंद हो जाता हूँ। दोनों जौहरी ताकत हैं और दोनों के दरमियान इख्तलाफात का एक पस मंजर है। मैं दोनों पर जोर दूंगा कि वो तहम्मुल से काम लें और तवक्को रखनी चाहिए कि हम सूरत हाल में इस्तेहकाम ला सकेंगे।
माइकल मकॉल रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेसमैन हैं।
मुझे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाव पर बहुत तश्वीश है। जाहिर है ये कुछ अरसे से चल रहा है, एक तवील अरसे से कश्मीर का झगड़ा चला आ रहा है। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास जौहरी हथियार हैं। हम इस मसले का पुरअमन हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। हम दोनों मुल्कों के दरमियान मुसल्लह तसादुम नहीं देखना चाहते।
ब्रैड शर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के रुकन हैं।
Very concerned.
हमें बहुत तश्वीश है। ये वाहिद खिता है जहां दो जौहरी रियासतों ने एक दूसरे की इलाकाई हदूद में अस्करी कार्रवाई की है। मुझे हैरानगी है कि कमेटी की समाअत के दौरान इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अमेरिका कैसे मदद कर सकता है, इसका अभी तायुन होना बाकी है।
आमी बैरा का भी ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है और वो ऐवान नुमाइंदगान के रुकन है।
We should be very concerned. Two nuclear
दो एटमी मुल्क हैं तो हमें फिक्र होनी चाहिए। इस वक्त कशीदगी में कमी लाने और डायलॉग पर जोर देना चाहिए। जाहिर है भारत में गुस्सा ज्यादा है और कल जो कुछ हुआ है उससे मामला ज्यादा खराब हुआ है। हमें एक कदम पीछे हटना चाहिए, कशीदगी कम करनी चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा का बयान दुरुस्त है कि ये वक्त कशीदगी में इजाफे का नहीं। टेडयोहो का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है।
दुनिया में और इतना कुछ हो रहा है तो इस वक्त हमें एक और तनाज़ा नहीं चाहिए। तवक्को रखनी चाहिए कि जी शऊर लोग इकट्ठे होकर इख्तलाफात खत्म करेंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये मसला तवील अरसे से चल रहा है।
अब कुछ आलमी खबरें। शाम में दौलत इस्लामिया के बचे खुचे जंगजुओं के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और जुमे की रात अमरीकी हमायत याफ्ता फोर्सेस ने तकरीबन 15,000 जिसमें अफराद और फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल थी, उन्होंने शाम के शुमाल मशरकी कस्बे बगूज में महसूर दाइश के जंगजुओं पर फिजाई कार्रवाइयों का आगाज किया है। शदीद लड़ाई के बावजूद हुकाम का कहना है कि ये लड़ाई ज़्यादा देर नहीं चलेगी। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस या SDF के तर्जुमान मुस्तफ़ा अबाली का कहना था कि उम्मीद है ये जल्द ख़त्म हो जाएगी। इससे कबल मुस्तफ़ा ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि SDF की फोर्सेस दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के साथ कस्बे की गलियों और मोहल्लों में लड़ रहे हैं जिनमें भारी असला इस्तेमाल किया जा रहा है। SDF के करीबी ज़राए का कहना है कि उन्हें तश्वीश है कि दाइश के अस्करियत पसंदों ने जगह जगह घरेलू साख्ता बम नस्ब कर रखे हैं और बहुत से जंगजू ज़मीन दोज सुरंगों में छुपे हुए हैं। SDF और अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि बागूज में तकरीबन 300 अस्करियत पसंद हैं मगर ये इंतहाई सख्तगीर और तजुर्बाकार हैं। बागूज में लड़ाई से चंद रोज़ पहले सर ट्रंप ने कहा था कि दौलत इस्लामिया की खिलाफत का आखिरी ठिकाना भी ख़त्म कर दिया गया है मगर कुछ अमरीकी सिक्योरिटी अहलकार इस बारे में मुहतात रवैया अपनाए हुए हैं। अमरीकी हुकूमत ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने की गरज से जुमे के रोज़ इसके 6 आला सिक्योरिटी अहलकारों पर ताज़ीरात आयद कर दी हैं और इसके अलावा दर्जनों अफसरान के वीज़ों को मनसूख कर दिया है। वेनेजुएला के लिए अमरीका के खसूसी एलची एलियट एब्राम्स ने जुमे को वजारत खारजा में इन पाबंदियों का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि जिन अफराद पर ताज़ीरात लगाई गई हैं उनमें नेशनल गार्ड कमांडर रिचर्ड लोपेज और कोलंबिया और ब्राज़ील की सरहदों पर मामूर पुलिस और फौज के अहलकार शामिल हैं। इन पाबंदियों के बाद इन अफराद के अमरीका में असासे मुंजमद कर दिए गए हैं और ये लोग अमरीकी शहरियों के साथ ताल्लुकात और कारोबार नहीं कर सकेंगे। ये इकदाम सदर निकोलस मादुरो पर दबाव डालने के लिए हैं कि वो इक्तदार छोड़ दें। अमेरिका और कई और ममालिक ने हिजब इख्तलाफ के रहनुमा हुआन गुएडो को अबूरी सदर तस्लीम कर रखा है।
उर्दू VOA के फेसबुक पेज पर अब न्यूज बुलेटिन भी। पीर से जुमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8, 9, 10 और 11 बजे। हमारे फेसबुक पेज की ID है www.facebook.com/voaurdu। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए हमारे फेसबुक लाइव बुलेटिन।
चंद रोज़ पहले वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में अमरीका और शुमाली कोरिया के दरमियान सरबराही इजलास गो के शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम को महदूद करने के बारे में बगैर किसी माहदे के ख़त्म हो गया है। तजियाकारों का कहना है कि ये मीटिंग मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं रही। वॉइस ऑफ अमेरिका के ब्रायन पैडन की रिपोर्ट की तफसीलात दे रही हैं यास्मीन जमील।
ہنوئی کے اجلاس میں صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ ان کے ساتھ اپنی دوسری ملاقات کو ختم کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ کم ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنے کے بارے میں صرف اضافی اقدامات کے بدلے تعزیرات کو مکمل طور پر ختم کرانے کے خواہش مند تھے۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ،
بیسیکلی دے وانٹڈ دی سینکشنز لفٹڈ ان دیئر انٹائرٹی اینڈ وی کڈنٹ ڈو دیٹ، دے ور ولنگ ٹو ڈی نیوک ا لارج پورشن آف دی ایریاز دیٹ وی وانٹڈ۔
بنیادی طور پر وہ یہ چاہتے تھے کہ تعزیرات کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، اور ہم یہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہماری خواہش کے مطابق بہت سے شعبوں میں بڑے پیمانے پر ایٹمی ہتھیاروں کو ترک کرنے کے لیے رضامند تھے، لیکن ہم اس کے لیے تمام تعزیرات سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا ہم کام جاری رکھیں گے اور ہم دیکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے جزوی طور پر تعزیرات میں نرمی دینے کا مطالبہ کیا تھا، جس سے معیشت متاثر ہوتی ہے، لیکن غالباً ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق مذاکرات میں سب سے اہم ہتھیار جو ٹرمپ کے پاس ہے اقوام متحدہ کی پابندیاں ہیں، جن سے ملک کی تیل کی برآمدات محدود ہوتی ہیں اور بیشتر درآمدات پر پابندی کا سامنا ہوتا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن میں کوریائی امور کی تجزیہ کار کیتھرین مون کا کہنا ہے،
مسٹر ٹرمپ فائنلی انڈرسٹڈ دیٹ ہز پرسنل چارم آفنسیو از ناٹ ایڈیکویٹ ٹو برنگ اباؤٹ ڈی نیوکلیئرائزیشن۔
مسٹر ٹرمپ کو بالآخر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں سے چھٹکارے کے لیے ان کی ذاتی شخصیت کی کشش سے کام نہیں چلے گا۔ یہ الفاظ تھے بروکنگز انسٹیٹیوشن میں کوریائی امور کی تجزیہ کار کیتھرین مون کے۔ خیال ہے کہ شمالی کوریا کے پاس 20 سے 60 جوہری بم ہیں، اور ساتھ ہی طویل فاصلے پر مار کرنے والے میزائل بھی جو امریکہ کی سرزمین پر مار کر سکتے ہیں۔ سنگاپور میں ٹرمپ اور کم کے درمیان پہلی سربراہی ملاقات کے دوران شمالی کوریا کے لیڈر نے مکمل طور پر ایٹمی ہتھیاروں کو ترک کرنے کے بارے میں کام کرنے کے لیے عمومی وعدہ کیا تھا۔ ہنوئی میں توقع تھی کہ دونوں لیڈر ٹھوس اقدامات، مثلا یونگ بیان کے ایٹمی اڈے کو ختم کرنے پر رضامند ہو جائیں گے، جہاں پلوٹونیم ایندھن تیار ہوتا ہے۔ یہ بھی توقع تھی کہ امن سے متعلق ایک اعلان پر دستخط کیے جائیں گے تاکہ تعلقات میں بہتری آ سکے۔ سربراہی ملاقات سے پہلے ہونے والے مذاکرات سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ واشنگٹن اپنے دیرینہ مطالبے پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے کہ شمالی کوریا کسی قسم کی مراعات حاصل کرنے سے پہلے مکمل طور پر اپنے جوہری پروگرام کو ختم کر دے۔ آرمز کنٹرول اور ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے سینٹر سے منسلک جیمز میکیون کے الفاظ،
It indicates that the US is interested in doing a step by step phased approach with North Korea, which is something that my organization
پتہ چلتا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ بتدریج اقدامات میں دلچسپی رکھتا ہے، جو ایک ایسی بات ہے جس کی ہماری تنظیم اور دوسرے ایک طویل عرصے سے سفارش کرتے رہے ہیں۔ مکمل طور پر ختم کرنے یا پھر کچھ بھی نہیں کا طرز عمل مؤثر ثابت نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ تھے آرمز کنٹرول اور ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے سینٹر سے منسلک جیمز میکیون کے۔ اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک نیوکلیئر معاہدے تک پہنچنے کے لیے کھلا ذہن رکھتے ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ دونوں لیڈر ایک اور سربراہی ملاقات پر رضامندی کا اظہار کریں، سٹاف کی سطح پر مذاکرات کنندگان فی الوقت پیچیدہ پالیسی اختلافات پر کام کریں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔
امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد دانشور اور سابق استاد جاوید بھٹو کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ وائس آف امریکہ اردو سروس سے منسلک معروف صحافی نفیسہ ہدبائے کے شوہر تھے۔ قتل کی واردات جمعے کی صبح واشنگٹن ڈی سی کے جنوب مشرقی علاقے میں جاوید بھٹو کے گھر کے نزدیک پیش آئی۔ امریکی دارالحکومت کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے قتل کے الزام میں ہلمن جارڈن نامی 35 سالہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ تاحال قتل کی وجہ واضح نہیں ہو سکی ہے، لیکن امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق قاتل جاوید بھٹو کے پڑوسی ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ قتل کی واردات کسی جھگڑے کا نتیجہ ہے۔ جاوید بھٹو کی عمر 64 سال تھی، اور وہ امریکہ منتقل ہونے سے قبل سندھ یونیورسٹی جام شورو کے شعبہ فلسفہ کے سربراہ بھی رہے تھے۔ سامعین، اس وقت ہفتے پاکستان میں ہفتے کی شام کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں واشنگٹن میں ہماری گھڑیوں پر، اسٹوڈیوز کی گھڑیوں پر دن کے 10 بجنے کو ہیں. طویل دورانیہ کا پروگرام آپ کی دنیا جاری ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب. اس وقت ہمیں معاف کیجیے گا، جمعہ کی صبح جنوبی افغانستان میں ایک فوجی مرکز پر طالبان کے حملے میں 45 سے زیادہ اہلکار ہلاک اور کئی اور طالبان کو پکڑ کر